أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، प्यारे दोस्तों और हमारे प्रोग्राम के सभी प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ईश्वर से ही आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन के हर क्षण में सुखी और प्रसन्न हों, और हमारी यही आप सभी के लिए दुआ है। प्यारे दोस्तों, हम अपने आज के कार्यक्रम में जिस बारे में बातचीत करेंगे उसका शीर्षक है सजदा। यानी हम आज के अपने कार्यक्रम में सजदे से संबंधित अहकाम और मसलों के बारे में बातचीत करेंगे, और हमारा प्रयत्न ये होगा कि इससे संबंधित वो मसले जो बहुत ज़्यादा पेश आते हैं, या वो मसले जो हमारे दर्शकों की तरफ से पूछे जाते हैं, उनको हम आपके सामने बयान करें। अगर हम आपके सामने बयान करना चाहें कि आज हमारा प्रोग्राम किन बातों पर आधारित होगा, तो उनको कुछ इस प्रकार बयान किया जा सकता है। सबसे पहली बातचीत जो हमारी होगी वो इस बारे में होगी कि सजदा है क्या चीज़, सजदा कहते किसको हैं। उसके बाद हम बातचीत करेंगे वाजिबात सजदा के बारे में। फिर हमारी बातचीत होगी इस बारे में कि सजदा किन चीज़ों पर सही है, और इसी के बाद हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला मसला या सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम अपनी बातचीत को आपके सामने पेश करेंगे, वो ये है कि सजदा कहते किसे हैं। सजदा है किसी के सामने सर को झुकाना, इसका माना है सजदा का, ये अर्थ है सजदे का। और हर नमाजी के लिए ये वाजिब है कि वो हर रकत के बाद जब वो रुकू कर चुके तो उसके बाद दो सजदे करे। ये हर नमाजी के ऊपर वाजिब है। जब तक ये ऐसा नहीं करेगा तब तक कि उसकी नमाज पूर्ण नहीं होगी और स्वीकार्य नहीं होगी। और सजदे का मतलब क्या है? क्या सजदे का मतलब केवल पेशानी का ज़मीन पर रख देना है? तो इस्लामी शरीयत ने सजदे के कुछ कानून बताए हैं कि जब इंसान सजदे में हो तो कैसा होना चाहिए कि उसको सजदा, इस्लामी सजदा कहा जाए। तो सजदे की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला ये कि जिस समय इंसान सजदे में है तो उसके बदन के कुछ अंग, कुछ भाग उसके ज़मीन पर होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले पेशानी या माथा, जिसको हम कहते हैं माथा, उसका उस चीज़ के ऊपर हो जिस पर सजदा किया जा रहा है। उसकी दोनों हथेलियाँ ज़मीन पर हों, दोनों घुटने ज़मीन पर हों, और दोनों पाँव के अंगूठे, ये सभी चीज़ें ज़मीन पर होना चाहिए। जब ये सभी चीज़ें एक समय में एक साथ ज़मीन पर होंगी तब इस्लामी शरीयत के अनुसार इंसान ने सजदा किया है और नमाज का सजदा उसको कहा जाएगा। और इसमें सजदे ही में एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि सजदा ईश्वर या अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए सजदा करना सही नहीं है, चाहे वो सजदा किसी मासूम, किसी नबी के लिए ही क्यों ना किया जा रहा हो। अगर इंसान ऐसा कर रहा है तो शिर्क है, कुफ्र है, और ये इंसान को नहीं करना चाहिए। तो सजदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर का किया जाता है, और उसके अतिरिक्त किसी का भी नहीं हो सकता है, चाहे वो मासूमीन की कब्र ही क्यों ना हो या नबी की कब्र ही क्यों ना हो। ये शिर्क है, ये कुफ्र है। हाँ, अगर इंसान अगर ज़ियारत करने जाता है और उस वक्त इस सोच के साथ, इस नियत के साथ सजदा करता है कि सजदा है मेरा उस ईश्वर के लिए, उस अल्लाह के लिए जिसने हमको ये तौफीक दी कि हम ज़ियारत पे आए, अगर इस नियत से सजदा किया जा रहा है तो सजदा सही है। तो ये वो चीज़ें थी जो सजदे के बारे में हमारा जानना ज़रूरी है कि सजदा कैसे होता है, सजदा किसे कहते हैं। उसके बाद जो मसाइल पेश आते हैं, सबसे पहले जो हमने आपको सामने बयान भी किया था कि जो हम बातचीत करेंगे वो है वाजिबात सजदा के बारे में। वाजिबात सजदा क्या हैं? पहले हम आपके सामने इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक के बाद एक क्रम के अनुसार आपके सामने बयान करेंगे, फिर वो चीज़ें जो अनिवार्य होंगी उनको विस्तृत रूप से हम आपके सामने आगे बयान करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो सजदे में है वो ये है कि इंसान जिस समय सजदे में है तो उसका सर उस चीज़ के ऊपर रखा होना चाहिए जिसके ऊपर सजदा करना सही है। ये वो चीज़ें क्या हैं, इनको हम आपके सामने आगे जब विस्तृत रूप से इसके बारे में बात करेंगे तब आपके सामने बयान करेंगे। उसके बाद जो चीज़ वाजिब है वो ये है कि इंसान जब सजदे में गया है तो ज़िक्र पढ़े, जिस तरह से रुकू में जाने के बाद उसने ज़िक्र पढ़ा था वैसे ही सजदे में भी जाने के बाद ज़िक्र पढ़े। सजदे का ज़िक्र क्या है इसको भी हम आपके सामने इंशाअल्लाह आगे बयान करेंगे। और जिस समय इंसान सजदे में गया हुआ है उसका शरीर ठहरा हुआ हो, जैसा कि हम आपको सामने ये इस बात को कई मरतबे बयान कर चुके हैं फिर आपके सामने बयान कर रहे हैं, वो ये है कि इंसान अपनी नमाज के हर हर स्थान पर उसको लिए अनिवार्य ये है कि अपने शरीर को हिलने डुलने न दे बल्कि ठहरा हुआ रहे। इसीलिए कहा जाता है कि नमाज में केवल एक जिक्र है जो हिलते डुलते समय कहा जाता है, उसके अलावा तमाम जिक्र ठहरे हुए हालत में है। वो क्या है, बिहौलिल्लाह व कुव्वतिही अकूमु व अक़ूद। सिर्फ ये एक ऐसा जिक्र है जो हिलती हुई अवस्था में कहा जाता है, उसके अलावा तमाम जिक्र ऐसे हैं जो ठहरी हुई अवस्था में कहे जाते हैं। इसीलिए इंसान को सजदे में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय वो जिक्र पढ़ रहा है उसका शरीर ठहरा हुआ हो, और जिस समय वो सजदे में गया हुआ है उसके सातों अंग, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था, यानी उसका माथा, उसकी हथेलियाँ दोनों, उसके दोनों घुटने और उसके दोनों अंगूठे पैर के, ये ज़मीन के ऊपर रखे हुए हों, और जिस समय वो सजदे में गया हुआ उसकी सजदे का जो स्थान है वो एक जैसा हो, ऊंचा नीचा ना हो कि जिस समय सजदे में वो सर रखे तो उसका स्थान ऊंचा नीचा हिल डुल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सजदे का स्थान बराबर होना चाहिए। और जिस समय इंसान सजदे में गया है और जिस स्थान पर अपने माथे को रख रहा है सजदे के लिए, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वो सजदे का स्थान पवित्र हो। तो ये वो चीज़ें थीं जो वाजिबात सजदा में सी थी। इसमें एक दो चीज़ें और हैं हम आपके सामने बयान करेंगे, उसके बाद हम विस्तृत मसलों के बारे में आपके सामने बातचीत करेंगे। और जिस समय, इसके अंदर एक और चीज़ है, जब इंसान के लिए सजदे दो हैं तो जिस समय सजदे से उठ रहा है, सजदे से उठ के बैठता है, तो बैठने के जिस समय बैठा है उस समय भी इस बात का ध्यान रखें उसका शरीर ठहर जाए, उसके बाद दूसरे सजदे के लिए वो जाए। और एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि दोनों सजदे के दरमियान मवालात का ध्यान रखे, यानी क्या, यानी एक निश्चित अंतराल के ऊपर दोनों सजदे करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए या बहुत जल्दी हो जाए। अगर बहुत देर हो जाए कि देखने वाला ये कहे कि इसने सजदा तो किया ही नहीं, तो ऐसा ही उठक बैठक कर रहा था, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मवालात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बाद जैसे कि हमने आपको वाजिबात सजदा में बताया कि जिस समय इंसान सजदे में जा रहा है तो उसके शरीर के सात अंग ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। इसके बारे में कुछ मसले हैं जो हम आपके सामने यहाँ पर बयान करेंगे। जिस समय इंसान, हमारे फुकहा ये कहते हैं कि जिस समय इंसान सजदे में गया हुआ है और सजदा कर रहा है, उसके लिए अनिवार्य ये है कि उसके शरीर के सात अंग ज़मीन के ऊपर रखे हुए हों। अगर कोई इंसान जानबूझकर अपने किसी भी एक अंग को भी सजदे के दरमियान ज़मीन से उठा लेता है तो उसकी नमाज बातिल है। यानी ध्यान रखना होगा कि अपनी पेशानी से लेकर अपने पैरों के दोनों अंगूठों तक इस बात का ध्यान रखें कि जिस समय सजदे में गया है और ज़िक्र पढ़ रहा है उस समय उसके शरीर के सातों अंग ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है जो ये है कि जिस समय ज़िक्र पढ़ रहा है, और अगर ज़िक्र नहीं पढ़ रहा है, अगर इंसान ज़िक्र नहीं पढ़ रहा है तो उस समय अगर शरीर के किसी अंग को उठा लेता है तो उससे नमाज के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन कौन से अंग को, अपने माथे के अतिरिक्त किसी दूसरे अंग को अगर उठाता है तो उसकी नमाज के ऊपर आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अपने माथे को अगर ज़िक्र नहीं भी पढ़ रहा है तो सजदे की अवस्था में नहीं उठा सकता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, जैसे हमने आपके सामने कहा था कि जिस समय साथ सजदा कर रहा है तो उसके अपने पैरों के दोनों अंगूठों को धरती पर रखना आवश्यक है। तो अगर यहाँ पर हमारे कुछ लोग इस बात को भी कह सकते हैं कि जिस समय हम लोग अपने सजदे में जाते हैं कि हमारे पैरों की अंगूठों के अलावा हमारी दूसरी उंगलियाँ भी ज़मीन के ऊपर लगती हैं तो उसके बारे में क्या मसला है, तो हमारे फुकहा यहाँ पर कहते हैं कि कम से कम तो ये है कि इंसान अपने पैरों के अंगूठों को धरती पर रखे, अगर उसके अतिरिक्त उसके पैरों की दूसरी उंगलियां भी धरती के ऊपर जा रही हैं, ज़मीन के ऊपर रखी जा रही हैं, तो उससे उसकी नमाज में कोई आपत्ति नहीं होगी, उसकी नमाज सही रहेगी और उसमें कोई इश्काल नहीं है। तो ये वो चीज़ें थीं कि ये इंसान सजदे के अंदर कैसा होना चाहिए, उसका शरीर किस प्रकार होना चाहिए। उसके बाद जो हम बातचीत करेंगे वो इस बारे में होगी कि इंसान जब सजदे में जा रहा है तो किन चीज़ों के ऊपर सजदा करे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंसान जिस समय सजदे में जा रहा है तो वो अपनी पेशानी को, अपने माथे को ज़मीन के ऊपर रखे या उन चीज़ों के ऊपर रखे जो धरती से उगती हैं। फिर कह रहा हूँ उन चीज़ों पर रखे जो धरती से उगती हों, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ यह है कि जो धरती से उगने वाली चीज़ें वो खाई और पहनी ना जाती हों। इसीलिए जैसे अगर कोई कपास के पौधे के ऊपर सजदा करना चाहे तो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे जो है रुई बनती है, उससे कतान बनता है और उससे जो है हम कपड़े बनाकर पहनते हैं, इसलिए नहीं कर सकता। या मसलन वो पत्ते जो खाए जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर अगर सजदा करना चाहे तो उसका सजदा सही नहीं होगा, बल्कि उसके लिए अनिवार्य ये है कि ऐसी चीज़ों पर सजदा करे जिनको खाया और पहना ना जाता हो। इसी के बाद एक और बात जो आती है वो ये है कि पकी हुई मिट्टी के ऊपर सजदा करना कैसा है। पकी हुई मिट्टी जैसे ईंट है, कूजे हैं, कुज्जे हैं, इस प्रकार की चीज़ें, इनके ऊपर सजदा करना कैसा है। तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं, इसमें आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनई का भी फतवा यही है कि पकी हुई मिट्टी जैसे ईंट और कूजे वगैरह पर सजदे करने में कोई इश्काल नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और अगर कोई इंसान ऐसी चीज़ों के ऊपर सजदा कर रहा है तो उसका सजदा सही है और उसकी नमाज भी सही होगी। और यहाँ पर उसके बाद बात आती है, कभी कभी इंसान मजबूर होता है या तकिया कर रहा होता है कि जहाँ पर किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर वो ऐसी चीज़ों पर सजदा नहीं कर सकता, यानी मिट्टी के ऊपर सजदा नहीं कर सकता या इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर सजदा नहीं कर सकता, विवश है, मजबूर है कि जानमाज के ऊपर या कपड़े के ऊपर या इस प्रकार की चीज़ों पर सजदा करे। तो इसके बारे में मसला क्या है, इसके बारे में हमारे फुकहा के दरमियान मतभेद है। जैसे इमाम खुमैनी ये कहते हैं कि इंसान उस तकिए की हालत में उसी स्थान के ऊपर वो सजदा कर सकता है नमाज के लिए, उसी अपनी जानमाज के ऊपर या उसी फर्श के ऊपर, उसको दोबारा किसी ऐसे स्थान के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है कि जहाँ पर वो सजदेगा या इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर सजदा करे। लेकिन यहाँ पर आयतुल्लाह खामनई और आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा थोड़ा सा अलग है। वो ये कहते हैं कि अगर इंसान के लिए संभव हो ये कि वो किसी ऐसे स्थान पर जा सके जहाँ पर तकिए से बाहर आके मिट्टी या इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर सजदा कर सकता हो, तो उसको चाहिए कि वो ऐसी जगह पर जाए और वहाँ जाकर नमाज़ पढ़े। अगर संभव नहीं है तब वो अपनी जानमाज या कपड़े वगैरह पर सजदा करे, लेकिन जहाँ तक उसके लिए संभव है, जहाँ तक उसके लिए इम्कान है, वो किसी दूसरी जगह पर जाकर नमाज पढ़े और मिट्टी या इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर सर रख के अपना सजदा करे। इसी प्रकार जैसे कि हमने आपके सामने ऊपर बयान किया था कि सजदा ऐसी चीज़ों के ऊपर सही नहीं है जो खाई और पहनी और खाई जाती हैं, उनके ऊपर सजदा सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर शायद कोई प्रश्न करे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जानवर खाते हैं, जैसे घास है या पत्ते हैं, इस प्रकार की चीज़ें जानवर खाते हैं, क्या ऐसी चीज़ों के ऊपर भी सजदा करना सही नहीं है? तो हम ये एक बार बता दें आपके सामने, यहाँ पर खाए और पहने जाने से हमारा तात्पर्य वो चीज़ें हैं जो इंसान के द्वारा खाई जाती हैं। अगर कोई चीज़ जानवर खाते हैं तो उसको खाए और पहनी चीज़ों के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, बल्कि उनके ऊपर सजदा करना सही होगा। इसी प्रकार कागज़ के ऊपर भी सजदा करना सही है, चाहे वो उस कपास से ही क्यों ना बने हों। लेकिन यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि इंसान कागज़ के ऊपर सजदा कर सकता है, लेकिन अगर उसको इस बात का विश्वास है, उसको पता है कि जिससे कागज़ बनाया गया है वो रेशम था, यानी रेशम से कागज़ बनाया गया है, अगर उसको पता था तो ऐसे कागज़ के ऊपर वो नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकता है। उसके लिए अनिवार्य ये है कि वो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर नमाज पढ़े। उसके बाद जो कहा जा सकती है सबसे बेहतरीन चीज़, यहाँ पर शायद कोई प्रश्न है सबसे अच्छी चीज़ क्या है जिसके ऊपर सजदा कर सकता है इंसान, तो सबसे बेहतरीन चीज़ जिसके ऊपर सजदा कर सकता है वो है करबला की मिट्टी, कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिट्टी, जिसके ऊपर सजदा करने का बहुत सवाब है और रवायात के अंदर भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और बयान किया गया है। और इसके ऊपर अंतिम मसला जिसके बारे में हम आपके सामने बातचीत करेंगे, उसके बाद जो मसले बचते हैं उसको इंशाल्लाह हम अपने किसी अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे, वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है पसीने के कारण या अपने माथे के चिपचिपे होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान नमाज के लिए सजदे में झुकता है तो वो जो सजदेगाह है उसके पेशानी में, उसके माथे में चिपक जाती है। वो उठता है तो पेशानी उसके चिपकी है। अगर वो क्या करे, क्या उसके लिए उसके बाद जब सजदे में जाना चाहता है पेशानी के लिए छुड़ाना आवश्यक है या नहीं? तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि इसके लिए बेहतर यह है, अनिवार्य यह है कि इंसान जब सजदे में जाना चाह रहा है तो अपनी पेशानी से उस सजदेगाह को छुड़ाए, उसके बाद उसके ऊपर सजदा करे, यानी पेशानी छुड़ाए उसके बाद रखे उसके ऊपर सजदा करे। यही मसला आयतुल्लाह खामनई और आयतुल्लाह सिस्तानी का भी है कि यानी उसको चाहिए, उसके ऊपर वाजिब यह है कि पहले सजदेगाह को छुड़ाए और उसके बाद उसके ऊपर सजदा करे। और अगर ऐसे ही सजदा कर लेता है यानी बिना छुड़ाए तो उसका ये सजदा माना नहीं जाएगा, उसकी नमाज़ बातिल होगी। इसके अलावा कुछ और मसले सजदे से संबंधित हैं जिसको हम अपने किसी अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर की पनाह में छोड़ता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।